भागवत सार की इस श्रृंखला में अब दूसरे स्कंद पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज से पहला स्कंद समाप्त हो चुका है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो दूसरे स्कंद पर चर्चा है। पहले इस श्लोक को पढ़ेंगे, पांचवा श्लोक है पहले अध्याय का, और फिर इस स्कंद पर और इस अध्याय पर चर्चा होगी। कृपया दोहराइए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं। श्रोतव्यः श्रवणीय है, कीर्तितव्यः महिमा गायन के योग्य, च भी स्मर्तव्यः स्मरणीय, च तथा इच्छता इच्छा करने वाले की, अभयम् स्वतंत्रता। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवद गीता में भी संस्कृत की गई है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा हैं जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस दूसरे स्कंद के पहले अध्याय की चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे, कृपा याचना करेंगे, ताकि इस दूसरे स्कंद को हम लोग ठीक तरह से समझ सकें।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिधान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेम वर्ष क्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत संगी मत गुरु मन महाधन मन निस्तारक मत भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम नारद कंठयो सुरा।
हरे कृष्ण। तो पहले स्कंद के अंत में 19वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। प्रश्न पूछ रहे थे परीक्षित महाराज अन्य लोगों से, फिर सुखदेव गोस्वामी आए, तो फिर सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया और उनका ये प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये बताइए कि सभी मनुष्यों के लिए और विशेषतः उसके लिए जो मृत्यु के कगार पर है, जो मरने वाला है, क्या करने योग्य है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने किया। श्लोक नंबर 38 में ये प्रश्न आता है 19वें अध्याय के। तो जब परीक्षित महाराज से ये प्रश्न सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो अब ये दूसरे स्कंद से परीक्षित महाराज के उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे सुखदेव गोस्वामी। तो ये जो पूरा दूसरा स्कंद है ये 10 अध्यायों में है, इसमें 10 अध्याय हैं। पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक भगवान की भक्ति, इसकी सर्वोत्कृष्टता के बारे में वर्णन है। कैसे भक्ति सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। तो ये वर्णन पहले तीन अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी करेंगे। फिर चौथे अध्याय से लेकर सातवें अध्याय तक वो दो विषयों का वर्णन करेंगे भागवत के, जो हैं सर्ग और विसर्ग। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद के द्वारा इन दो विषयों को प्रकट करेंगे। भागवत में 10 प्रमुख विषय हैं जो इसी स्कंद में सुखदेव गोस्वामी अंत में बताने वाले हैं। तो सारी चर्चा हम लोग जब उस अंत में अध्याय पर जाएंगे तब करेंगे, लेकिन केवल विषयों को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी जो बताते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं कि 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के। अत्र सर्गः विसर्गश्च स्थानम पोषणम उद्धया ईशनुकथा मनवंतरा निरोध मुक्ति आश्रयः। तो ये 10 विषय सुखदेव गोस्वामी ने दिए इस भागवत के। तो चौथे अध्याय से लेकर सातवें अध्याय तक वो ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद के द्वारा सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब पहले प्रथम स्तर की सृष्टि रचना। जब ये भौतिक जगत की रचना होती है तो दो स्तरों पर होती है, एक प्रथम स्तर प्राथमिक और एक द्वितीय स्तर। प्राथमिक स्तर पर ब्रह्मा जी नहीं करते क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म ही नहीं होता तभी। तो प्राथमिक स्तर पर सृष्टि करते हैं महाविष्णु और द्वितीय स्तर पर सृष्टि की रचना होती है इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उसको विसर्ग कहते हैं। तो सर्ग अर्थात महाविष्णु के स्तर पर की गई इस भौतिक जगत की सृष्टि, ब्रह्मांड की नहीं भौतिक जगत की, और द्वितीय ब्रह्मा जी के स्तर पर ब्रह्मांड की गई सृष्टि, वो विसर्ग कहलाती है। जब ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं फिर 14 भुवनों को बनाते हैं, जीवों को बनाते हैं, तो ये सब विसर्ग में आता। तो चौथे अध्याय से सातवें अध्याय तक ये चर्चा करेंगे सुखदेव गोस्वामी। फिर आठवें से दसवें अध्याय में परीक्षित महाराज के प्रश्न होंगे और चतुश्लोकी भागवतम इसको प्रकट किया जाएगा। चतुश्लोकी भागवतम का अर्थ है वो भागवतम जो चार श्लोकों में पूरी भागवतम भगवान ने ब्रह्मा जी को सुना दी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, कैसे दिया? केवल चार श्लोकों में। संपूर्ण भागवत जो 18,000 श्लोक हैं उनको चार श्लोकों में केवल भगवान ने सुना दिया, तो वो चतुश्लोकी भागवतम कहलाई। तो ये हम अंतिम अध्यायों में देखेंगे और अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भागवत के विषयों को भी प्रकट करेंगे। तो ऐसे ये पूरा दूसरा स्कंद बटा हुआ है जिसमें 10 अध्याय हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले 10 दिनों में इन पूरे 10 अध्यायों पर चर्चा हो जाए ताकि दूसरे स्कंद पर भी हम लोग चर्चा को समाप्त कर सकें, ज्ञान ले सकें। आप सब ये स्मरण रखिएगा कि जब हम लोग इन अध्यायों को पढ़ रहे हैं, स्कंदों को पढ़ रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि कितने हमने अध्याय पढ़ लिए, कितना स्कंद पढ़ लिए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हर अध्याय से, हर स्कंद से, हर श्लोक से हम क्या सीख रहे हैं और उसको कैसे जीवन में उतार रहे हैं। केवल सुनना पूर्ण नहीं है, सुनकर जीवन में उतारना वो पूर्ण है, उसे सुनना कहा जाता है। जब ये कहा जाता है कि कृष्ण कथा सुननी चाहिए, इसका अर्थ ये है कि सुनकर उसके सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कृष्ण कथा सुने और फिर जैसा जीवन है वैसे ही चलाते रहें और कोई बदलाव नहीं और हम सुने, वो सुनना नहीं है। वो तो इस कान से सुनना और इससे बाहर निकाल देना है, या कह देना चाहिए उतना भी नहीं है, कान को बंद कर लेना, केवल आना और चले जाना, इसी कान से अंदर प्रवेश नहीं करना। तो सही दृष्टि में श्रवण का अर्थ होता है जिन चीज़ों को सुने उनको जीवन में उतारें। तो जैसे पहले स्कंद में हमने जो भी विषय सुने हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो दूसरे स्कंद में अब ये पहला अध्याय है, तो पहले अध्याय में शुरुआत के पहले 11 श्लोक ये भक्ति की सर्वोत्कृष्टता को प्रकट करते हैं कि भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, जिनमें से दूसरे से लेकर चौथे श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी उन लोगों का वर्णन करते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, या कहना चाहिए सुखदेव गोस्वामी उस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न जब परीक्षित महाराज ने किया तो उन्होंने दोनों चीज़ें पूछी थी, ये बताइए कि क्या करना चाहिए और ये बताइए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया जो नहीं करना चाहिए दूसरे से चौथे श्लोक तक, और फिर पांचवें श्लोक से आगे वो वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो 11वें श्लोक तक भक्ति की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन करेंगे और उसके बाद 12 से 14 तक वो वर्णन करेंगे, एक उदाहरण देंगे कि मनुष्य जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, लंबा जीवन या भक्तिमय जीवन, इसका वर्णन वो करेंगे। और फिर उसके बाद के श्लोकों में वो भगवान के विराट रूप का वर्णन करने वाले हैं जिस पर प्राथमिक अवस्था में भक्ति की अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बटा हुआ है। तो पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आपका प्रश्न जो है ये गुणगान करने योग्य है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और जो इसका उत्तर होगा वही सुनने योग्य है, वही स्मरण करने योग्य है। परीक्षित का प्रश्न क्या था, क्या सुनने योग्य है, क्या स्मरण करने योग्य है, क्या वर्णन करने योग्य है? उन्होंने कहा ये जो आपने प्रश्न किया है इसका उत्तर ही सुनने योग्य होगा, इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुनकर वो इतने आनंद में हो गए, इतने आनंद में हो गए कि उस समय सुखदेव गोस्वामी अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब कोई वक्ता कथा प्रारंभ करता है तो उससे पहले वो मंगलाचरण करता है, अर्थात भगवान को प्रणाम करता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है, जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं भागवत कहने के पहले, भागवत पर चर्चा के पहले। तो ऐसे ही हर कथा के पहले, जैसे आप चैतन्य चरितामृत में देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कहने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ये सारे ग्रंथों का नियम है मंगलाचरण। इस ग्रंथ में भी हम देखते हैं शुरुआत में व्यासदेव ने मंगलाचरण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कोई मंगलाचरण नहीं करते, क्योंकि प्रश्न सुनकर इतने आनंद में हो गए कि अब भक्ति का वर्णन करना है तो पहले तीन अध्यायों में मंगलाचरण करना ही भूल गए, किया ही नहीं मंगलाचरण। फिर चौथे अध्याय में जब और एक प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, तब उन्होंने मंगलाचरण किया। तब उनको ध्यान आया कि अरे मंगलाचरण भी कर लेना चाहिए, कथा शुरू कर रहा हूं, तो उस समय किया। मतलब इतने भावाविभोर हो गए, इतने आनंद में आ गए कि मंगलाचरण भूल गए। बस जैसे ही प्रश्न सुना, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और तुरंत उत्तर देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सुखदेव गोस्वामी का स्तर देखिए कि जहां उनको अब भक्ति के बारे में बोलने का अवसर है, इसलिए तीन अध्याय तक भक्ति का वर्णन है, तो जहां भक्ति के बारे में बोलने का अवसर आया तुरंत सब कुछ भूल गए, भावाविभोर हो गए, और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने दूसरे से चौथे श्लोक में परीक्षित को ये बतलाया कि लोग कैसा जीवन जीते हैं, वो लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, और वो वर्णन करते हैं बहुत सुंदर श्लोकों में। उन्होंने वर्णन किया है कि वो कहते हैं कि हे राजन, बाहर के जो लोग हैं, जो भौतिकवादी हैं, जो भगवान से नहीं जुड़े हैं, उनके पास सुनने के लिए बहुत कुछ है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निणाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रहमेधिना। वो कहते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निणाम संति सहस्रशा, बाहर के लोगों के पास बहुत से विषय हैं बात करने के लिए, सब बेकार के कचरा कूड़ा करकट, लेकिन बात बहुत करते हैं। अब देखिए कितने सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, क्या भरा पड़ा है उसमें। एक बार पढ़ने के बाद आदमी कचरे के डब्बे में फेंक देता है, पढ़ने के पहले भी कचरा है, पढ़ने के बाद भी कचरा है। क्या लिखा होगा, राजनीति, किसने किसको क्या कहा, कहां पर क्या हुआ, कहां बम फेंका, कहां पर मरे, इसके अलावा कुछ नहीं। कृष्ण कथा कुछ नहीं है। अरे मरना तो सबको ही है, फिर भी मरने के समाचार देते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देते कि मरना तो है लेकिन कैसे मरना है, ये भागवत में दिया गया। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम। आत्मा के विषय को नहीं देखते, पश्यताम यानी देखना, अपश्यताम यानी नहीं देखना। और क्यों नहीं देखते हैं, गृहेषु ग्रहमेधिना, घर में पड़े रहते हैं, घर से आसक्त रहते हैं, और क्या मानते हैं, क्या करते हैं घर में रहकर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निद्राया, रात में सोते हैं, रात में सोने में बिता देते हैं और दिन में केवल धन कमाने में। रात को सोते हैं, कहते हैं कि जीवन रात्रि में या तो सोने में जाता है और दिन कमाने, या सोने में चला जाता है या फिर गलत सुख लेने में चला जाता है, निद्रा। तो निद्रा उसमें व्यर्थ कर देते हैं और दिन में केवल धन कमाते हैं, बस जीवन समाप्त हो जाता है। और ऐसे लोग क्या मांगते हैं, बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं उसके आगे, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्य सतस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चौथे श्लोक में इस अध्याय के कि देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्य, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घर में फंसा रहता है, ग्रहेषु ग्रहमेधि नाम, जिसके लिए घर ही सब कुछ है, ग्रहमेधि मतलब जिसका सारा अस्तित्व केवल घर है, मैं और मेरा परिवार, तो ऐसा व्यक्ति आत्मसैन्य से घबराता है, डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, और उसको सैनिक चाहिए अपनी रक्षा के लिए। किनको सैनिक मानता है, देहापत्य कलत्रादिषु, देह पत्य पत्य यानी बच्चे आपत बच्चों को यहाँ पर अपत्य कहा गया है उनको बच्चे या फिर सरल भाषा में कहें तो आफत कहा गया है अपत्य तो देहापत्य कलत्रादि शुक्लत पत्नी इत्यादि आदि आदि मतलब जो भी हमारे संबंधी हमारे ये आत्मसैन्यस्य सतस्वपि क्या सोचता है मेरे सैनिक हैं क्या करेंगे आत्म मेरी रक्षा करेंगे। गजेंद्र जब पानी में फंस गया तो सारे खड़े थे वही पत्नियां जिनके साथ आनंद लेता था उसके बच्चे उसके संबंधी सारे हाथी खड़े थे कोई कुछ कर नहीं पाया। तो आत्मसैन्य से सतस्वपी तेषां प्रमत्तो निधनम और क्या होता है अपने निधन को देख नहीं पाता प्रमत्तो पागल हो जाता है। देखिए सही में ऐसा है व्यक्ति को अपने बच्चे अपना परिवार बस उसी में इतना फंस जाता है प्रमत्तो निधनम मरने वाला है उसको भूल जाता है। रोज देखता है टीवी में देखता है अखबार में पढ़ता है इतने लोग मारे गए ऐसे हो गया घर के पास वाला मर जाता है घर के दूर वाला मर जाता है रिश्तेदार मर जाता है लेकिन मैं नहीं मरूंगा। युधिष्ठिर महाराज से जब प्रश्न किया यक्ष ने बताओ सबसे आश्चर्य की चीज क्या है इस जगत में परम आश्चर्य क्या है युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम इच्छन्ति किम् आश्चर्य परम। उन्होंने कहा परम आश्चर्य इस जगत में एक ही है अहनी अहनी भूतानि रोज जो जीव हैं गच्छन्ति जा रहे हैं यमालयम् यम के पास यमराज के लोक में यमालय मतलब यम का लोक। तो रोज लोग मर रहे हैं लेकिन शेषा शेषा मतलब जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं स्थावरम इच्छन्ति उनकी इच्छा क्या है मैं सदैव बना रहा हूं मुझे कुछ नहीं होगा मेरे संबंधी मर गए कोई बात पड़ोसी मर गया कोई बात नहीं दूसरे देश के लोग मर गए कोई बात नहीं मैं स्थावरम इच्छन्ति मेरी इच्छा है मैं बना रहा हूं। ये आसुरी भाव है। हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा सदा बना रहूं रावण ने क्या मांगा सदा बना रहूं सारे असुर एक ही चीज मांगते मरू नहीं। तो ऐसे लोग तो इसको युधिष्ठिर महाराज कहते हैं शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य परम इससे परम आश्चर्य और क्या हो सकता है सब जा रहे हैं लेकिन जो लोग बचे हुए वो सोचते मैं बना ये नहीं सोचते कि मैं भी जाऊंगा एक दिन। तो जीव को यह सोचना चाहिए। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्य सतस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति देख कर भी नहीं देखता। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि जैसे एक बकरा होता है बहुत सारे बकरे खड़े हैं एक कटने के लिए चला गया वो बकरा देख रहा है कि ये कटने के लिए चला गया लेकिन वो आराम से घास खाता क्यों क्योंकि उसको नहीं पता कि अगला नंबर उसका है वो भी कटने वाला है लेकिन वो बड़े आराम से घास खा रहा है। पश्यन अपि न पश्यति यही हम सब की स्थिति है। देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने कड़े शब्दों में हम लोगों को बतला रहे हैं कि मूर्खों अब तो समझो अब तो घर को छोड़ो देहापत्य कलत्रादि शिवात्म सैन्य स्वतस्वपी तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन अपि न पश्यति ये माया है ये भगवान की माया है। पश्यन अपि न पश्यति तो रोज देख रहे लोग मर रहे हम भी मरने वाले हैं लेकिन व्यक्ति इसी में फंसा रहता है और इसीलिए फिर वो क्या कहते हैं अब तक तो उन्होंने कह दिया कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब में फंसे रहते हैं मतलब यही घर को चलाना परिवार को चलाना वही जीवन मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए अब तक बताया कि जो लोग हैं जो फंसे रहते हैं लेकिन ऐसे सारे लोग भी अगर मरने की तैयारी करें और क्या तैयारी है तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम् क्या करना चाहिए वो बताते हैं कि भगवान कौन भगवान भगवान का चार शब्दों में वर्णन किया चार अलग अलग शब्दों से पहला सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि उन्होंने कहा कि किसका भजन करना चाहिए, श्रोतव्य किसके विषय में सुनना चाहिए, कीर्तितव्य किसकी बात करनी चाहिए, स्मर्तव्य किसका स्मरण करना चाहिए। चार गुण दिए। पहला सर्वात्मा, सर्वात्मा अर्थात जो हम सबके हृदय में हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हैं, तो इसलिए सर्वात्मा कहते हैं उनको, क्योंकि तुम्हारे हृदय में हैं इसलिए उनका भजन करो। और दूसरा भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान हैं वो, सारे ऐश्वर्य उनमें हैं, सारे गुण उनमें हैं, सभी चीज़ों के स्रोत हैं, इसीलिए उनकी पूजा करो। और ईश्वर, अगर प्रेम से नहीं करते तो ये जानकर कर लो कि वो ईश्वर हैं, नियंतक हैं, सभी चीजों का नियंत्रण वही कर रहे हैं, कम से कम इस डर से तो उनकी पूजा करो। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको पता चला कि इस कंपनी का जो बॉस है वो एक बॉस वो जो चाहे कर सकता है, तो अगर आप जाकर उसको थोड़ी उसकी सेवा करने लगे, उसकी उसकी पूजा तो नहीं, जो भी आप पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेवा करने लगे तो क्या होगा, कंपनी में आपको अच्छा पद मिल जाएगा, कंपनी में अच्छे बने रहेंगे, थोड़ी प्रगति हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। तो क्योंकि वो नियंत्रक है तो उस भाव से तो कम से कम करो ईश्वर, नियंत्रण है, करना ही है, वही इंचार्ज है, तो उसकी पूजा तो करनी है। इस जगत में देवी देवता इंचार्ज नहीं है, वो तो भगवान के अधीन रहने वाले इंचार्ज है। इसका वर्णन हम लोग गोवर्धन लीला में देखते हैं, नंद बाबा समझा रहे थे कि अरे अगर इंद्र की पूजा नहीं की तो बारिश कैसे होगी, वो इंचार्ज हैं, वो प्रमुख हैं, कंट्रोलर नियंत्रक हैं, लेकिन कृष्ण का नहीं, वो तो कृष्ण बोलने वाले तो वो तो मेरे अधीन है, उसकी चिंता क्यों करते हो आप। तो इसलिए नियंत्रण। और हरि, हरि अर्थात हमारे सारे कष्टों को दुखों को हरने वाले एक ही हैं श्री कृष्ण, फिर किसी और की शरण क्यों जाना। गणपति आपके दुखों को नहीं हर सकते, निश्चित है। दुर्गा दुखों को नहीं हर सकती, दुर्गा तो दुख दे सकती त्रिशूल मार मार के, दुखों को कोई नहीं हर सकता क्योंकि हरि एक ही है श्री कृष्ण, फिर क्यों दूसरे की शरण जाना। बड़ा सरल है लोगों के लिए, पता नहीं लोगों की बुद्धि में ये बात क्यों नहीं जाती है। भक्ति में आकर भी वो गणेश जी की पूजा चालू रखते हैं, नहीं नहीं हमारे घर का नियम है। अरे नियम ने ही तो इतने सारे जन्म दे दिए, ये नियम के कारण ही तो ये जन्म ले लेके मर रहे हैं अभी, फिर भी नियम को पकड़े हुए हैं, नहीं हमारी परंपरा है, हमारा घर है, हमारा ये है, नहीं। ईश्वरो हरि, एक ही है हरि, वही दुखों को हरेंगे, वही कष्टों को हरेंगे, और किस तरह से हरेंगे वो जाने। कभी कभी सुख देकर हरेंगे, कभी दुख देके हरेंगे, भगवान कैसे भी दुखों को हर सकते। कभी कभी कोई भक्त कामना कर लेता है, जैसे हमारी संस्था में एक भक्त थे, अच्छे ब्रह्मचारी थे, फिर किसी कारण से विवाह किया लेकिन उनको बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने जाके भगवान से प्रार्थना की कि हाय मुझे कैंसर हो जाए, मैं मर जाऊँ, अच्छा है। एक महीने के अंदर कैंसर हो गया, एक महीने के अंदर, छः महीने के अंदर मृत्यु, चले गए। शादी हुई थी, एक साल भी नहीं हुआ था, उन्होंने प्रार्थना की भगवान ने, ठीक है। तो सबको देखने में बड़ा, अरे ऐसे कैसे, क्या इतने अच्छे ब्रह्मचारी थे और भगवान ने ऐसा क्यों किया, उनको कैंसर दे दिया युवा अवस्था में, 30 साल भी नहीं उम्र थी, कैंसर से चले गए। लेकिन भगवान कैसे किसी को शुद्ध करते हैं वो भगवान जाने। उनको कैंसर देके शुद्ध किया, क्योंकि जीवन के अंत में अगर हम लोग उनको देखें तो इतना कृष्ण भावना भावित थे कि शायद पूरे जीवन नहीं हो पाते, भगवान ने कैंसर देकर उनको कृष्ण भावना भावित कर दिया। भगवान की, भगवान कैसे शुद्ध करते हो भगवान जाने। कभी कभी कोई कामना करते हैं, मेरे को बहुत सरल, मेरे को सीधा भक्त बनना है, भगवान इतना उसको थप्पड़ मार मार के सीधा बनाते कि व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, अरे ये क्या हो गया, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था ये होगा। नहीं, भगवान कैसे करें, कभी सुख दे के करते। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के पास गए, उन्होंने मांगा मुझे राज्य चाहिए, पिता से भी बड़ा, पिता नहीं ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, भगवान ने दे दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 चाहिए, ये क्या कर रहे हो आप, मैं तो फंस जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं फंसोगे, तो ध्रुव को राज्य देकर उन्होंने उनको शुद्ध किया, लेकिन कई लोगों को सब कुछ छीन कर शुद्ध करते हैं। तो भगवान एक ही हैं जो हर सकते हैं, इसीलिए केवल उनकी शरण जाना। तो देखिए कितना सुंदर भागवत अभी प्रारंभ हुआ है, सुखदेव गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया है, कितने सारे, ये तो एक एक श्लोक पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग तो पूरे अध्याय पर कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं। एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, केवल पिछले जो दो श्लोक, पहले जो दो श्लोक बोले उन्होंने, दो से चार तीन श्लोक, इसी पर कई दिनों तक चर्चा हो सकती है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निणाम संति सहस्रशः, और जो देहापत्ति कलत्रादिषु, बस यही दो श्लोक बहुत हैं कई दिनों तक चर्चा करने के लिए। तो ऐसे शिवदेव गोस्वामी ने बताया कि इसीलिए क्या सुनना चाहिए, वो भगवान का विषय जो सबके दुखों को हरते हैं, हरी हैं, इसीलिए श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चताभयम्। तो दोनों उत्तर दे दिए, पहला उनका प्रश्न था कि क्या नहीं करना चाहिए, वो बता दिया कि इतना आसक्त नहीं होना चाहिए पारिवारिक जीवन में। दूसरा प्रश्न क्या करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और इसका लाभ क्या होगा वो बताते हैं अगले श्लोक में, कहते हैं छठे श्लोक में बहुत सुंदर वो बताते हैं कि इसका लाभ क्या होगा, अंते नारायण स्मृति ही। वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह से जीवन जिएंगे, उद्देश्य ये होना चाहिए, क्योंकि तुम मरने वाले हो, तुम प्रश्न कर रहे हो, इसलिए बता रहा हूं कि अंते नारायण स्मृति ही, भगवान की स्मृति होनी चाहिए अंत में। चाहे आप कुछ भी कर लो, ज्ञान अर्जित कर लो, योग कर लो, भक्ति करो, कुछ भी करो, अंते नारायण स्मृति ही, ये जीवन की सफलता है। अगर सारा कुछ करके जीवन में बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बड़े श्लोकों पर चर्चा कर ली, लेकिन अंत में भगवान का स्मरण नहीं हुआ, एग्जाम फेल। जैसे ये ऐसे हुआ कि व्यक्ति रोज स्कूल गया, रोज कॉलेज गया, पूरी अटेंडेंस 100%, और एग्जाम में 0। तो इसलिए अंते नारायण स्मृति ही, भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं ना, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और फिर वो कहते हैं बहुत सुंदर बात, कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो अध्यात्मवादी हैं वो भगवान का आनंद, गुणों का आनंद लेने में, गुणगान करने में आनंद लेते हैं। मतलब जो पूर्ण रूप से विरक्त है, जिनको कुछ लेना देना नहीं इस भौतिक जगत से, अध्यात्म में लगे हैं, वो भगवान के गुणों को बोलने में आनंद लेते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है भगवान का विषय बोलने में। तो माननीय परीक्षित महाराज के विषय मन में एक प्रश्न आ गया कि अरे आपने तो बोल दिया वो अध्यात्मवादी, वो बड़े बड़े योगी ज्ञानी, हमारा क्या, हमारे लिए कुछ है कि नहीं, हमारे जैसे गृहस्थों के लिए? तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत कहते हैं ना, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। वो कहते हैं कि आप सबके लिए या सभी लोगों के लिए, केवल आपके लिए नहीं, मेरे पिता द्वापर आदो कहते हैं, अधीतवान द्वापर आदो पितु द्वैपायनादयम, मेरे पिता द्वैपायन ऋषि ने, व्यास देव ने क्या दिया है, इदम भागवतम नामम, भागवत नाम का पुराण दिया है जो ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम मतलब वेद के समान है, साधारण पुराण नहीं है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, तो ये वेद के समान पुराण है, तो इसीलिए इसको दिया है। और इसको मैंने अपने पिता से सुना, द्वापर आदो, द्वापर के अंत में मैंने अपने पिता से इस ग्रंथ को सुना है, और मैं उसको ही तुम्हें सुनाऊंगा। तो वो कहते हैं कि ये ग्रंथ जो सुना, तो मानो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया हो कि क्या लाभ होता है, ग्रंथ सुनने से सब लाभ हो जाएगा, कोई ऐसा उदाहरण है? तो कहते मेरा खुद का उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परिनिष्ठेऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। वो कहते हैं कि मैं ब्रह्म में ध्यान करता था, मेरा खुद का उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए भागवत में हम लोग बहुत जगह ये देखेंगे कि जो आचार्य हैं, जो भक्त हैं, वो अपना उदाहरण देकर अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले हमने स्कंद में देखा, नारद मुनि ने अपने ही जीवन का उदाहरण दिया व्यास देव को, मैं छोटा बच्चा था, ऐसे ऐसे हुआ इत्यादि। तो अब सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, कि और कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है, मेरा उदाहरण है, मैं ब्रह्म में ब्रह्म ब्रह्म लीन हो रहा था। और जैसे ही उत्तम श्लोक ली लिया, भगवान की लीला को सुना, अहो बकीयम सनकाल कूटम जिघाम सया पायदप्य साधवी लेभे गतिंधात्रि उचितम ततोन्य कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। बस ये सुना सुखदेव गोस्वामी ने, सब ब्रह्म रम्म भूल गए, सब चले गए थे। ये तो आप पिछली बार हम लोग पिछले स्कंद में कथा सुन चुके हैं, गर्भ से निकले और भाग गए सीधा सुखदेव गोस्वामी। पिता भाग रहे पीछे पीछे, हा पुत्र सुखदेव गोस्वामी मैं नहीं आने वाला। चले गए जंगल में, क्या करूंगा तपस्या, क्या करना है तपस्या करके, ब्रह्म में लीन होऊंगा, वही सर्वश्रेष्ठ है, ये सब माया है। अब फिर जब श्लोक सुना तो भाग कर आए। क्या क्या कहा आपने, क्या कहा? अहो बकीयम सन काल कूटम, इतनी बड़ी राक्षसी को उन्होंने मां का स्थान दे दिया, कौन है ये, कौन है कृष्ण? तो उन्होंने कहा आप भागवत सुनाता फिर सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई और पूरी भागवत सुनी उन्होंने। और फिर तो सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि मेरा खुद का उदाहरण है, मैं तो भाग गया था लेकिन मैं फिर से आ गया और मैं उसी भागवत को अब आपको सुनाऊंगा और आप उसको सुनिए। और फिर भागवत को सुनाते हुए शुरुआत अब कर रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि ये जो मैं भागवत आपको सुना रहा हूं ये केवल मेरा मत है, केवल मैं कह रहा हूं कि भागवत श्रेष्ठ है सुनने के लिए। ये तो बड़े बड़े योगियों ने एतन एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णितम। ये जो भागवत है ये ऐसे लोगों के लिए भी है, एतन निर्विद्यमानानाम, जो सब मुक्त हो गए जिनको कुछ नहीं चाहिए, इच्छिताम जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, अकुतो भयम भय से जो मुक्त होना चाहते हैं, इन सब के लिए योगी नाम नृप निर्णितम। हे राजन हे नृप, योगी नाम, योगी मतलब जो योगी हैं या बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, निर्णितम, निर्णितम मतलब उन्होंने निर्णय लिया है। और क्या निर्णय लिया है? हरेर नामानुकीर्तनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नामानुकीर्तनम। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया है कि सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च बात क्या है? हरि के नाम का कीर्तन। तो देखिए प्रारंभ में ये कह रहे हैं, मध्य में ये कहेंगे, अंत में ये कहेंगे। शास्त्रों में श्लोक आता है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो अंतो च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। कि चाहे आप वेद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, वेदे रामायण रामायण ले लीजिए, पुराणे भारते महाभारत ले लीजिए, कोई ग्रंथ लीजिए, कोई साहित्य लीजिए, साहित्य अर्थात भगवान का संबंधी दिया वैदिक शास्त्र, बाकी साहित्यों का वर्णन नहीं, तो कोई वेद वेद साहित्य लीजिए, आदो शुरुआत में, अंतो अंत में, मध्य बीच में, हरि ही सर्वत्र गीयते। सारे शास्त्रों में केवल भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि का ही गुणगान है। तो इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि हे योगी नाम नृपनिर्णितम हरे नामानुकीर्तनम, बस भगवान का नाम का कीर्तन करना है। तो फिर उन्होंने देखा परीक्षित महाराज के चेहरे पर थोड़ा सा उदासी आ गई इसको सुनकर। क्यों उदासी आ गई? बड़ी अच्छी बात कही थी, उदास क्यों होना चाहिए? परीक्षित महाराज सोचने लगे कि हाय मैंने जीवन बेकार कर दिया, जीवन में भरे नामानुकीर्तन भगवान का श्रवण नहीं किया, मैं राज्य करता रहा, इधर उधर घूमता रहा, दंड देता रहा, युद्ध करता रहा, लेकिन जीवन में तो यही करना है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हरे नामानुकीर्तनम, और केवल वो नहीं योगी नाम नृपनिर्णितम। तो फिर तो मैंने जीवन बर्बाद कर दिया और अब समय ही नहीं बचा, अब 7 दिन बचे, तो बड़ी गलती हो गई मेरे से, कितना बड़ा मैंने मेरा नुकसान हो गया, वो कहने लगे या सोचने लगे। तो उदासी देखकर तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चिंता नहीं करो, ऐसा मत सोचो कि तुमने जीवन बर्बाद कर दिया। उदाहरण देने लगे खटवांग महाराज का, वो कहते हैं कि खटवांग महाराज ने केवल दो मुहूर्त में, समय नहीं था उनके पास। खटवांग महाराज की कथा इस प्रकार है कि खटवांग महाराज एक समय बहुत शक्तिशाली सूर्यवंशी राजा थे और बड़े शक्तिशाली देवताओं के लिए युद्ध करने गए। तो जब देवताओं के लिए युद्ध करने गए, काफ़ी समय बीत गया, युद्ध हो गया, और युद्ध के बाद उन्होंने नीचे देखा तो समय चला गया कि समझिए वहाँ पर अगर एक साल दो साल उन्होंने युद्ध कर लिया, छः महीने युद्ध कर लिए, यहाँ तो कितने सारे साल चले गए। तो उन्होंने देवताओं से प्रश्न किया कि आप बताइए कि, देवता ने पूछा आपने बहुत अच्छा हमारे लिए किया, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो खटवांग महाराज ने दो ही चीज़ें कही। पहला तो कहा कि मुझे अभी इसी क्षण अयोध्या में स्थानांतरित कर दीजिए, साकेत अयोध्या में, ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ भगवान का स्मरण करना। और दूसरा उन्होंने पहले उनसे पूछा कि मेरे पास कितना समय है, मुझे एक ही बात बताइए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब खटवांग महाराज देवताओं से कह रहे थे आप क्या मुझे दे सकते हैं। आप लोग देवता बड़ी बड़े अहंकार से पूछ रहे थे खटवांग महाराज से क्या चाहिए आप। खटवांग महाराज ने कहा इतना बता दो मैं मरने वाला कब, मेरा जीवन कितना शेष है। देवताओं ने कहा कुछ ही क्षण बाकी हैं आपके जीवन में बस। खटवांग महाराज ने कहा ठीक है, तुरंत स्थानांतरित करो। पूरा ध्यान भगवान पे लगा दिया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण क्यों दे रहे हैं ये, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे उनके पास तो कुछ क्षण थे, तुम्हारे पास तो 7 दिन है परीक्षित, चिंता क्यों कर रहे हो। तो परीक्षित महाराज मुस्कुरा दिए, हाँ ये बात तो सही है, अरे वो अगर 2 क्षण में 2 मुहूर्त में वो भगवान का स्मरण करके मुक्त हो सकता है। और खटवांग महाराज की कथा क्या है कि वही देवता जिन्होंने तुरंत स्थानांतरित किया वहां पर, खटवांग महाराज कुछ ही क्षणों में उनकी मुक्ति हो गई। वैकुंठ से विमान आया और वो वही देवताओं के देखते देखते वैकुंठ जा रहे हैं, देवताओं को टाटा करते हुए, बहुत अच्छा बैठे रहो इधर ही। देवता बेचारे बैठे रहते, क्या करें वो लोग, भी कुछ कर नहीं पाते, शुद्ध भक्ति करते नहीं है, हरे नामानु कीर्तन करते नहीं है, इंद्र को चिंता रहती है मेरा कोई राज्य नहीं ले जाए, सिंहासन नहीं ले जाए, तो कहाँ भक्ति करे। देखिए हमारे लिए उदाहरण है ये जो इंद्र इत्यादि है, उदाहरण है, हम भी कोई कम नहीं है, हमारे अंदर भी यही चीज है कि मेरा व्यास आसन कोई नहीं ले जाए, मेरी कोई बैठे नहीं, मेरी कोई पोजीशन नहीं ले जाए, मैं ही बना रहा हूँ श्रेष्ठ। तो हम सब में भी है ना, हम सब भी यही चाहते हैं, मैं अगर कहीं का इंचार्ज हूँ तो इंचार्ज बना रहा हूँ, प्रेसिडेंट हूँ तो प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, GBC हूँ तो GBC बना रहा हूँ, कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं, सब बने रहना चाहते हैं। तो ये देवता भी ऐसे ही है, इंद्र भी यही है, अपना बस सिंहासन की चिंता, हरे नामानु कीर्तन हम कब करेंगे हम लोग, सीखिए। इन घटनाओं से हमें सीखना चाहिए। खटवांग महाराज ने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, उनको पता चला कि कुछ क्षण, हमारे पास तो कुछ पता नहीं अगला क्षण है कि नहीं है, फिर भी हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते, इसी में फंसे रहते, मैं कब श्रेष्ठ हो जाऊँ, मैं कब प्रमुख हो जाऊँ। अरे प्रमुख होके क्या करना है, वहीं पर कब्र बनेगी आपकी, वही प्रमुख है, बस एक बोर्ड लगा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे थे और थे गए, फिर दूसरा कहीं जन्म, फिर वही। इसीलिए हरे नामानु कीर्तनम। तो परीक्षित महाराज को उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, आपके पास तो 7 दिन हैं, आप चिंता नहीं करो। तो ऐसे ये 12 से 14 श्लोक तक कहते हैं परीक्षित महाराज को, अब आपकी आयु और 7 दिन शेष है, इसीलिए आप चिंता मत करो। तो अंत काल में फिर वो बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अंत काल में कम से कम व्यक्ति को पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाना चाहिए, जीवन भर नहीं हो सकता तो कम से कम अंत काल में तो हो जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं घर को छोड़े, बहुत सुंदर, गृहात् प्रवृजितो धीरा, मनुष्य को घर छोड़कर आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। देखिए ये आदेश दे रहे सुखदेव गोस्वामी, करना चाहिए, गृहात् प्रवृजितो धीरा, छोड़ो घर को। तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए नहीं कह रहे हैं, वो तो वैसे ही घर छोड़कर बैठे हुए हैं, है ना, फिर उनको क्यों ये बोल रहे हैं वो, बताइए। अब वो तो वैसे ही घर छोड़कर राज्य छोड़कर आकर नदी के तट पर बैठे हुए हैं जीवन त्यागने के लिए, उनको ये बोलने की क्या जरूरत है कि व्यक्ति को जीवन के अंत में घर छोड़ना चाहिए, तो उनके लिए नहीं है ये, हमारे लिए। हमको सिखला रहे सुखदेव गोस्वामी, कह रहे जीवन भर आसक्त हो, कम से कम मृत्यु के समय तो अनासक्त हो, छोड़ो घर को, त्यागो घर को। कहते हैं तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और शुद्ध होकर एकांत स्थान में ध्यान करना चाहिए भगवान का। तो अब सुखदेव गोस्वामी भगवान के ध्यान की विधि का वर्णन करेंगे कि कैसे भगवान पर ध्यान करना चाहिए। इस अध्याय में वो भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं, दूसरे अध्याय में भगवान जो हृदय में उनका वर्णन, तीसरे अध्याय में भक्ति का, फिर चौथे अध्याय से परीक्षित महाराज का प्रश्न आ गया सृष्टि के विषय में, तो फिर उन्होंने उसका वर्णन प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए यहां देखिए कितने महत्वपूर्ण संदेश इस अध्याय में हमारे लिए है। केवल एक अध्याय पढ़ लें जीवन सफल, और इसमें बताया कि ये ईश अनुभूति की प्रथम सीढ़ी है, पहला, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो भगवान को साक्षात्कार की पहली स्थिति में हमें ये सब कर लेना चाहिए। तो इसीलिए वो सुखदेव गोस्वामी वहाँ बताते हैं कि व्यक्ति को जीवन के अंत में, हम श्लोक का अनुवाद पढ़ना चाहेंगे, मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो। अर्थात तो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं आप चिंता क्यों करो, कोई डर नहीं, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से आसक्ति को तोड़े। ये महत्वपूर्ण है। और फिर वो कहते हैं मनुष्य को घर छोड़कर आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। तो कोई ये सोच सकता है ये तो अंत में ना, जीवन के अंत के लिए कहा, उस समय अनासक्त, तब तक पूरा आसक्त रहेंगे अंत समय तक, जब तक एक सांस भी बाकी है, और फिर जब एक सांस निकलने वाली होगी तब पूर्ण अनासक्त हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर जीवन में अभ्यास नहीं किया घर त्यागने का, आत्मसंयम का, तो मृत्यु के समय कुछ नहीं होगा, केवल आसक्ति रहेगी। कई बार हम वो कथा सुना चुके हैं कि एक व्यक्ति था जिसके पुत्र थे, बूढ़ा हो गया, पुत्रों को दुकानें बनाकर दे दी, घर के बाहर ही दुकानें थी, मरने लगा। उसको उस समय पहले किसी साधु ने कहा था कि अरे भगवान का स्मरण करो, अभी तो बहुत कुछ करना है, बच्चों को संभालना, बच्चे के बच्चों को संभालना, ये करना वो करना। फिर अंत समय आया तो उसको याद आई साधु की बात, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था, मरने वाला था, जोर से चिल्लाया। अब जोर से चिल्लाया तो सारे लड़के भाग कर आ गए कि क्या हो गया, लगता है जाने वाला है, चलो अब तो कम से कम उसको कुछ अच्छा, उसको कुछ कहें। तो जैसे उसने लड़कों को देखा, मरने वाला, तीनों को देखते चिल्लाने लगा, मूर्खों, मैंने जीवन भर इतना कमाया, उसको दुकान बनाई, तुम लोग छोड़ कर आ गए, वहाँ चोरी हो जाएगी तो क्या होगा। और इतना कहते कहते राम नाम, तो क्या हुआ जीवन के अंत में, अवसर था, स्मरण भी आया कि भगवान का स्मरण करने के लिए साधु ने कहा था, लेकिन क्योंकि अभ्यास नहीं था, जिस चीज का अभ्यास था, रुका, धन या कुछ और शब्द कहा था ना आपने कल, हाँ दुट्टू दुट्टू, हाँ तो बस वही ध्यान आया अंत में, अरे अरे नुकसान हो जाएगा, अरे मूर्ख व्यक्ति, दुकान का नुकसान हो जाएगा, अरे कहाँ जाएगा वो, सोच कॉकरोच बनकर पैदा होगा उस दुकान में। तो यही हम सबका जीवन है, हम लोग भी बस उसी में लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अवसर मिलता है, शास्त्र हैं, भक्त हैं, मंदिर हैं, लेकिन अंत तक व्यक्ति उसी में लगा रहता है, और फिर अंत में बस यही दुख, हाय हाय। इसीलिए हर व्यक्ति रोते रोते जाता, हाय हाय करते हुए भय से। आप देखिए जो भी मरता है वो डर से मरता है, इसीलिए मरने के समय लोग मलमूत्र त्याग देते, भय हो, क्या भय है, कुछ पता नहीं कहां जाएंगे, और अपनी आसक्तियों का भय, आसक्तियां छूटने का भय, मेरे धन का क्या होगा, परिवार का क्या, पत्नी का कौन ध्यान रखेगा, बच्चों का क्या होगा, अभी उसने इंजीनियरिंग पूरी नहीं की, अभी ये नहीं, अरे तुमने क्या किया वो सोचो, वो तो उन लोग का जीवन वो चलाएंगे, वो इंजीनियरिंग भी पूरी कर लेगा, धन भी कमाएगा, आराम भी करेगा, आपका क्या। तो इसीलिए इस समय में कम से कम सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अंत में तो कम से कम ये आ जाना चाहिए। तो अंत में कब आएगा, जब हम अभ्यास करेंगे। तो इसलिए भक्ति का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो उस अब वो आगे के श्लोकों में 16वें श्लोक से लेकर आगे भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। क्यों करते हैं विराट रूप का वर्णन, कहते भी हैं कि कल्पना है। विराट रूप का ये जो वर्णन है, आगे भी वर्णन आएगा तीसरे स्कंद में भी, यही है कि कल्पना है ये। कोई जैसे अभी कहा जाए कि अभी जैसे वर्णन करेंगे विराट रूप का, तो उसमें कहेंगे कि जो पर्वत हैं भगवान के हड्डियों के समान हैं, पेड़ जो हैं भगवान के रोह के समान हैं, सूर्य जो है भगवान की आंखें हैं। तो ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से अलग नहीं है। इस चीज को समझिए, सूर्य पेड़ पर्वत ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से अलग नहीं है। कैसे, भगवान की शक्ति का रूपांतरण है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट्य है ये सब। और भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, तो इसलिए भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान की शक्ति भगवान नहीं है, इसको मानना चाहिए। तो इसीलिए इस कल्पना को दे रहे हैं कि शुरुआत में व्यक्ति को जब भक्ति प्रारंभ कर रहा है, जो भौतिकवादी है, उसको कम से कम ये भौतिक चीजों को देखकर भगवान का स्मरण आना चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे भगवान का स्मरण करेगा नहीं। तो इसीलिए इन भौतिक चीजों को देखकर, वैसे वो कहते हैं कि सबसे अच्छी विधि है भगवान पे स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, लेकिन क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति है, भौतिक चीजों को देखता है, तो इसीलिए डीटी वर्शिप कर लेना चाहिए, क्योंकि भौतिक रूपों में भगवान भौतिक पदार्थों में प्रकट होते हैं। तो हमें आदत है भौतिक चीज़ों को देखने की, इसीलिए भगवान भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे वो वर्णन करते हैं, कई तरह का उन्होंने वर्णन किया भगवान के विराट रूप का। एक वर्णन लोकों के अनुसार किया उन्होंने, कि जो नीचे के लोक हैं वो भगवान के पाँव के समान हैं, बीच के लोक भगवान का मध्य शरीर है, और फिर ऊँचे ऊँचे लोक जो हैं वो भगवान का चेहरा इत्यादि, और जो सत्य लोक है वो भगवान का सिर है। तो ऐसे लोकों को उन्होंने, 14 भुवन हैं आप सब जानते हैं, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, नीचे रसातल से लेकर ऊपर सत्य लोक तक, तो जिसको कभी कभी त्रिभुवन भी कहते हैं, तीन भुवनों में बांटते हैं, ऊंचे लोक, मध्य लोक और निम्न लोक, लेकिन है वैसे वह 14 लोक। तो 14 लोगों को उन्होंने बताया कि ये भगवान का शरीर है। फिर प्रकृति की दृष्टि से बताने लगे कैसे भगवान को देखना है, सूर्य उन, चंद्र उनकी आंखें हैं, पर्वत उनके हड्डियां हैं, जो पेड़ हैं वो उनके शरीर पर उगने वाले बाल हैं। और एक बहुत सुंदर बात वो कहते कहते कह देते थे कि सुखदेव गोस्वामी के जो श्लोक हैं, हर एक श्लोक को बड़े ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने तो बड़ा आनंद आता है। इन सबको कहते कहते एक बात वो कह देते हैं बीच में कि भगवान की एक मुस्कान भी है, और वो क्या है, वो कहते हैं जनोन्माद करी च माया, हासो जनोन्माद करी च माया। तो कहते हैं कि भगवान की जो हास यानी मुस्कान है वो क्या है, माया। माया कौन सी माया, जनोन्माद करी, जो लोगों को पागल कर देती है, उन्माद मतलब पागलपन। तो जो लोगों को पागल करती है वो माया उनकी मुस्कान है, मतलब लोगों को पागल देखकर भगवान मुस्कुराते, क्या पागलपन। हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा, मैंने कई फैक्ट्रियां बना ली, बिल्डिंगें बना ली, ये हो गया वो हो गया, मेरे आगे पीछे पुलिस वाले बंदूक लेकर चल रहे हैं, कभी पीछे भाग रहे हैं, कभी साथ में चल रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। भगवान हंसते हैं देखकर ऊपर से, जन अनुमाद करी चमार भगवान देव ये क्या। जैसे हमने कई बार एक उदाहरण दिया, एक बार हम गोकुल धाम में थे तो कीड़े को देखा था, वो पानी में इधर से उधर जा रहा था, बस फिर थक जाता था, रुकता था 5 मिनट, फिर उधर ही इधर से उधर, वही उसका काम था। तो हम सोच रहे थे कि जो कीड़ा है, अभी हम देख रहे थे हमारी दृष्टि से इतने से पानी में इतना सा कीड़ा इधर से उधर जा रहा है, ये सोच रहा होगा कि मेरा जीवन सफल हो रहा है ना, इधर से उधर उधर से इधर, स्पीड में जितनी स्पीड में कर लूँ उतना जीवन सफल, फिर थक जाता था फिर करता था। हमें हंसी आ रही थी देख के कि क्या जीवन है इस कीड़े का, लेकिन तुरंत हमारे मन में आया कि ऊपर से जब भगवान देखते होंगे या देवता देखते, वो भी हम लोग को देख के यही कहते होंगे कीड़ा इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, ये पूरा दुनिया में घूम लिया, इधर हो गया, ये बना लिया, और है तो कीड़ा ही, उतनी जगह में चल रहा है और अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मान रहा है। तो इसको कहते हैं हास्य जन उन्माद करीच माया। ये माया है भगवान की जो हमें भगवान से दूर रख देती है। तो ऐसे इस विराट रूप का फिर अंत तक, इस अध्याय के अंत तक उन्होंने वर्णन किया। तो एक लोकों के हिसाब से किया, दूसरा वर्णन प्रकृति के हिसाब से किया, तीसरा वर्णन वर्णाश्रम के हिसाब से किया। तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वो भगवान का सिर है, जो वैश्य है वो भगवान का उदर है, और जो क्षत्रिय हैं वो भगवान की बाहु हैं, और जो शूद्र हैं वो भगवान के चरण हैं। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन किया, अर्थात या तो हैं या उनसे आते हैं। दूसरी दृष्टि में ब्राह्मणों को बुद्धिमान होना चाहिए, सिर मतलब सिर सारे शरीर में प्रमुख होता है, ठीक है ना। अगर हाथ कट गया तो भी शरीर बना रहेगा, पैर कट गया तो भी शरीर बना रहेगा, लेकिन अगर सर कट गया तो व्यक्ति का क्या लाभ है। तो सर ब्राह्मण सारे जो समाज है उसके प्रमुख होते हैं। तो इसीलिए इस तरह से अलग अलग दृष्टि से इस भगवान के विराट रूप का उन्होंने वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने, और कहा कि इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पूरा मन उस पर लगाना चाहिए। विधि भी बताई, आसन पर बैठना चाहिए, ठीक से भगवान का स्मरण करना चाहिए, ऐसी चीज़ों में भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। दरअसल भगवद गीता के भी 2-3 अध्यायों में भगवान ने इसको दिया है, यही कारण है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं रसो हम अप सुकौंते या प्रभास्मी शशि सूर्य यो, जो जल का रस है वो मैं हूँ, जब सूर्य की किरण है वो मैं हूँ। तो क्यों बताते हैं ऐसे भगवान, क्या पानी भगवान है तो फिर तुम्हें पीने की जगह उसकी आरती उतारनी चाहिए, है ना। रसो हम अब सुकौनते, या भगवान कहते हैं कि जो भी चीज़ देखते हो, खाते हो, पीते हो, मेरा स्मरण करो। तो भक्तों को जब भगवान जब रस पिए या पानी पिए तो उसका जो स्वाद आए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए कि ये भगवान की शक्ति है, नहीं तो जल में स्वाद कहाँ से आ सकता है, अपने आप तो नहीं आ सकता, किसने दिया, भगवान की शक्ति। सूर्य में रोशनी अपने आप तो नहीं आ सकती, चंद्रमा में नहीं आ सकती, कहाँ से आई, भगवान की शक्ति। तो इसीलिए इन चीज़ों को बताकर शुकदेव गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान पर स्मरण करना चाहिए, भगवान को स्मरण अवस्था का वर्णन करते हैं। वैसे इसमें उन्होंने अष्टांग योग का प्रारंभ में वर्णन किया, अष्टांग यानी 8 क्रियाएं, उन 8 का वर्णन उन्होंने 16वें, 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में कर दिया अष्टांग योग का। तो अष्टांग योग मतलब 8 योग, 8 अंग होते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये 8 अंग होते हैं। तो अष्टांग योग कहते हैं, अष्टांग यानी पहले यम। यम नियम मतलब कुछ चीज़ पालन करना, कुछ चीज़ पालन नहीं करना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग भक्ति में हमारे लिए भी यम नियम हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगल आरती में आना चाहिए, सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये यम नियम हैं। और फिर आसन, योग में आसन में बैठा जाता है, प्राणायाम, प्राणों को और प्राणवायु को वश में किया जाता है ताकि ध्यान लग सके। तो यम नियम, प्राणायाम, आसन हो गया, फिर उसके बाद ध्यान धारणा आती है। तो ध्यान क्या है विधि, दरअसल योग के द्वारा जब भगवान को जो हृदय में है उनको देखने का प्रयास किया जाता है। अभी भगवान हृदय में है लेकिन हमें दिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि मन मैला है। और इसीलिए भक्ति की विधि से, भगवान के नाम की विधि से चेतो दर्पण मार्जनम, उसको साफ किया जाता है, तब हम भगवान को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं जो हृदय में है। तो परमात्मा को देखना ये ध्यान कहलाता है। और जब वो ध्यान बहुत गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा मतलब बड़ा तीव्र, फिर वो लंबे समय तक रहता है, कई घंटों तक रहता है, उसको धारणा कहते हैं। और फिर जब वही धारणा बहुत लंबे समय तक रहती है, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, वो समाधि कहलाती है। तो भगवान के ध्यान पर ही सब आश्रित है, जैसे जैसे ध्यान तीव्र होता जाता है हमारी स्थिति भक्ति में आगे बढ़ती जाती, योग में आगे बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इन विषयों को सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में कहते हैं। और फिर एक प्रश्न भी परीक्षित महाराज ने कर लिया कि जब धारणा की बात आई तो धारणाश्रय धारणा कैसे होनी चाहिए, कौन कर सकता है धारणा, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी सुखदेव गोस्वामी इसमें देते हैं। और फिर अगले अध्याय में अब वो परमात्मा पर ध्यान, भगवान वो जो हृदय में हैं कैसे उनको हम जान सकते हैं, उसका वर्णन अब अगले अध्याय में करेंगे। तो ये तीन अध्यायों में केवल भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन है, जैसे इस अध्याय के श्लोक में विशेषता उन्होंने कहा हरे नामानु कीर्तनम तस्मात् भारत सर्वात्मा, इस सबको भक्ति का विषय उन्होंने बताया।